सम्यक ज्ञान चंद्रिका कर्मकांड लेक्चर नंबर 11। ओम नमः सिद्धे गोमटसार कर्मकांड ग्रंथ की रचना की है। उसी के आधार से पंडित टोडरमल जी ने सम्यक ज्ञान चंद्रिका भाषा टीका ढूंढारी भाषा में लिखी थी और उसका यह हिंदी अनुवाद हम पढ़ रहे हैं। पृष्ठ संख्या 72। प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार चल रहे हैं। प्रकृतियों के बारे में व्याख्या, उनके नाम बताएंगे, मूल भेद उत्तर भेद बताएंगे और उसकी विशेषताएं भी यहाँ बताएंगे। अभी तक हमने ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 9, उसके बाद वेदनीय की 2, मोहिनी की 28, आयु 4 और 93 नाम कर्म, उसके बाद गोत्र की 2 और अंतराय की 5। उसमें से नाम कर्म की हमने निरुक्ति अभी देखने चालू की थी। निरुक्ति ने शब्द कैसे तैयार हुआ, ज्ञानावरण से लेकर हर एक की हम देखते आए हैं और नाम कर्म में हम आए हैं, तो उसमें से अभी तक कौन कौन से देखे हमने सर, जैसे लगे गति, जाति, शरीर, बंधन, संगात, संगन, अंगोपांग,
संस्थान,
पहले संस्थान, अंगोपांग और सहनन देखे, यहाँ तक देखे, अभी आगे देखेंगे। अभी वर्ण गंध रस स्पर्श की बात करेंगे। जिसके निमित्त से शरीर का वर्ण होता है वह वर्ण नाम कर्म है, यानी उस जाति के उस वर्ण के परमाणुओं का ग्रहण होता है। वह 5 प्रकार का है, कृष्ण वर्ण नाम, नील वर्ण नाम, रक्त वर्ण नाम, पीत वर्ण नाम, श्वेत वर्ण नाम, नाम यानी नाम कर्म। जिसके उदय से शरीर में गंध होता है वह गंध नाम कर्म है। वह 2 प्रकार का है, सुरभि गंध नाम और दुरभि गंध नाम, जिसको हम दुर्गंध और सुगंध कहते हैं।
सुगंध दुर्गंध।
जिसके उदय से शरीर में रस होता है वह रस नाम कर्म है। वह 5 प्रकार का है, तिक्त यानी चरपरा यानी तीखा, तिक्त नाम कटुक यानी कड़वा नाम, कषाय नाम, आम्ल नाम और मधुर नाम। कषाय ने वो तुरा तुरट मराठी में कहते हैं। तो किसी का शरीर तीखा होता होगा, किसी लगे, हाँ बोलो बोलो, मिर्ची है ना वो लग ख्याल नहीं है तो हम तो मनुष्यों की सोचते हैं ये सब में लगा है, वर्ण में, गंध में, सब में लगा लो। जिसके उदय से शरीर में स्पर्श हो वह स्पर्श नाम कर्म है। किस प्रकार का स्पर्श होता है तो यह कहते हैं वह 8 प्रकार का है, कर्कश नाम मृदु नाम, कर्कश ने कठोर, मृदु या कठोर ऐसे हम कहते ना। गुरु नाम लघु नाम, गुरु यानी भारी वजनदार और लघु यानी हल्का। शीत नाम उष्ण नाम, स्निग्ध नाम और रुक्ष नाम, ये वर्ण गंध रस स्पर्श देखें। अब अनुपूर्वी की बात देखेंगे यहाँ पर, जिसके उदय से, जिसके उदय से यानी जिस अनुपूर्वी के उदय से, पहले जो शरीर था विग्रह गति में उसके आकार का नाश न हो, उसके आकार का नाश न हो, कहाँ की बात है, विग्रह गति की बात है। यानी एक शरीर छोड़ा, एक पर्याय छूटकर दूसरे पर्याय में अभी वहाँ शरीर धारण करने जा रहा है, अभी धारण नहीं किया है, उसके पहले यदि मोड़ से जाता है, एक मोड़ दो मोड़ या तीन मोड़ यथा योग्य, तो मोड़ के पहले पूर्व में ये अनुपूर्वी का उदय होगा। उसके कारण क्या होता है, उसके आकार का नाश नहीं होता, पूर्व भव का आकार कायम रहता, वह अनुपूर्व्य नाम कर्म, इसको अनुपूर्वी भी कहते हैं, गत्यानुपूर्वी भी कहेंगे, प्रायोग्यानुपूर्वी भी कहेंगे, अनुपूर्व्य भी कहेंगे, अलग अलग नाम आते हैं। वह चार प्रकार का है, नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व्य नाम, तिर्यंच गति प्रायोग्यानुपूर्व्य नाम, मनुष्य गति प्रायोग्यानुपूर्व्य नाम और देवगति प्रायोग्यानुपूर्व्य नाम। नरक गति प्राप्त होने को योग्य ऐसे पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के विग्रह गति में पंचेंद्रिय पर्याप्त शरीर का आकार जिसके उदय से रहे वह नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व्य नाम है, ऐसे ही सब जानना। तो मेरा प्रश्न ऐसा है, ये नरक गति प्रायोग्यानुपूर्व्य के उदय में जीव का आकार कैसा रहेगा, नारकी जैसा? हाँ, तो कौन सा हो सकता है चार गति में से, देवगति का हो? सुनो सुनो सुनो, जब आपको पूछा जाएगा तो आप बताना। हाँ, देवगति का हो सकता है और मनुष्य का हो सकता है। हाँ, मनुष्य नहीं होगा, मनुष्य नहीं है तीनों, और नारकी भी नरक में जाएगा कि नहीं, नारके मरकर नरक में जा सकता है कि नहीं? नहीं, वो देव जाता है, देव मरकर नरक में जाता है कि नहीं? नितिन भाई मालूम नहीं, कभी गए नहीं हम, नहीं जा सकता।
वो बोलते हैं मैं नरक में बहुत बार गया, देव में कभी नहीं गया, इसलिए मालूम नहीं।
नरक में जाने वाले या देव में जाने वाले मनुष्य या तिरंच में से ही जाते हैं। नरक में जाने वाले तो पंचेंद्रिय ही जाएंगे, देव में भी जाने वाले पंचेंद्रिय ही जाने वाले, वहां से आने वालों में डिफरेंस है ना, ये नियम की बात आई थी ना सिद्धांतों में। आगे पढ़ेंगे हम, देखो कोई देव मरकर नरक नहीं जा सकता, कोई नार के मरकर देव में नहीं जाता, तो देव में कौन जाएंगे, कौन से गति वाले जाएंगे, तिरंच या मनुष्य जाएंगे? पंचेंद्रिय ही जाएंगे। असंगी भी जा सकते हैं, परंतु वो मात्र भवनवासी और व्यंतर में जाएंगे, ज्योतिषी में भी नहीं जाएंगे, और नरक में जाएंगे तो पहले नरक में जाएंगे असंगी पंचेंद्रिय, बाकी नीचे के नरकों में भी नहीं जाएंगे, ऊपर के स्वर्गों में भी नहीं जा सकते, बाकी तो सर्वत्र संगी पंचेंद्रिय जाएंगे। हाँ, असंगी जीव के, हाँ सोचने की एज, बिना सोचे भी पाप पुण्य होते हैं। हाँ, वो उसकी योग्यता जो उसके संकलेश और विशुद्धि की जो रेंज है वो संगी पंचेंद्रिय इतनी नहीं है, इसलिए वो तो मंद परिणाम होते हैं उसके संकलेश में भी और विशुद्धि में भी। ख्याल में आती बात, क्योंकि हमने देखा था वो अधिक से अधिक बंद करेगा उत्कृष्ट मिथ्यात्व का, तो भी कितना करता है, अरे एक सागर असंगी, असंगी की असंगी तो एक कोड़ा कोड़ी ने एक सागर, सॉरी हजार सागर, मैं एक सागर एक इंद्रिय की बता रही थी, असंगी की बात है, एक हजार सागर, तो उसके इतनी संकलेश भी तीव्र नहीं होगी, विशुद्धि भी इतनी मंद नहीं होगी, दोनों ओर से उसकी लिमिटेशन, तो वो जा सकता है स्वर्गों में, पर भवनवासी या व्यंतर में जा सकता है, नरक में जाएगा तो पहले नरक में जा सकता है। यहाँ जो बात हो रही है पंचेंद्रियों का आकार रहेगा लिखा ना, यहाँ लिखे नरक गति प्राप्त होने को योगी, नीचे के तीसरी लाइन ऊपर के पैराग्राफ की, नरक गति प्राप्त होने को योग्य ऐसे पंचेंद्रिय पर्याप्त जीव के विग्रह गति में पंचेंद्रिय पर्याप्त शरीर का आकार जिसके उदय से रहे। अब यहाँ तीरियन जी या मनुष्य ऐसा नहीं लिखा, वो तो हमें समझना चाहिए, क्योंकि नरक में जन्म लेने वाले नारकी नहीं हो सकते, वो इमीडिएट नरक में नहीं जाते। नारकी मरकर संगी पंचेंद्रिय में ही उत्पन्न होगा नियम। देव तो एक इंद्रिय में भी जा सकते हैं या पंचेंद्रियों में जाए, बीच वाले नहीं, असंगी में नहीं जा सकते, असंगी पंचेंद्रिय क्षत्रिय में तीनवे द्वितीय में नहीं जा सकते। अब ये कौन से कहाँ जाएंगे, जब आगे चलकर हम पढ़ेंगे कौन से जीव कौन सी प्रकृतियाँ बांधते हैं बांध सकते हैं, तब इसकी बात और ख्याल में आएगी। तो ये नियम ऐसे क्यों है उसकी बात भी हमारे ध्यान में आ जाए। अभी हम पढ़ेंगे आगे। जिसके उदय से शरीर भारी नहीं होता, इस कारण लोहे के पिंड की तरह नीचे नहीं गिरता और हल्का भी नहीं होता, इस कारण आँख के फूल के समान, आँख के फूल यानी सेमर की उल्ट, आपने शायद वो तो बिल्कुल वो जिसको कपास होती है ना, सेवरी कहते हैं मराठी में, देवकापुस हिंदी में क्या कहते हैं, आँख सेमर कहते हैं, गुजराती में क्या कहते हैं, नहीं नहीं वो तो ऐसे हल्के होते हैं जैसे वो कपास ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं, हाँ बिल्कुल हल्का होता है, हाँ रेशमी ऐसा इतना ऐसा उसका जो बोन जिसको कहते हैं इतना होता है, झाड़ पर लटकता है, यहाँ सोसाइटी में अपने बाजू की बिल्डिंग में वहाँ झाड़ दिखता है, हाँ उसके समान ऊंचा नहीं उठता, ऐसा शरीर हुआ अगुरु लघु नाम कर्म है। नितिन भाई मुझे बताओ, ये लोहे के पिंड भारी है और जो सेमर की रुई हल्की है ना, तो एक किलो लोहा ज्यादा भारी होगा कि एक किलो वो रुई भारी होगी, क्यों? अब सब पक्के हो हमने देवलाली शिविर में पूछा था, सबने बता दिया लोहा भारी होगा क्योंकि लोहा भारी है और ये कपास तो हल्का है, मान लीजिए हम बता रहे एक किलो हाँ हो सकता है भी लोहा एक किलो इतना होगा और कपास एक किलो इतना होगा तो उसको कहते अगुरु लघु नाम कर, ना अति हल्का ना अति भारी। पुनश्च अभी उपघात शब्द कैसे तैयार हुआ, उपेत्य घाता उपघाता, अपने घात का नाम है, अने स्वयं का जो घात करे वो उपघात। जिसके उदय से यानी उसके इस नाम कर्म के उदय में शरीर में ऐसे अंगों की रचना होती है कि जो स्वयं का ही घात करने में कारणभूत है, तो अपने अंगों से अपना घात हो ऐसे बड़े सिंह, हमने देखा था वो क्या कहता है, वो बारह सिंह का कहते हैं, हाँ जानवर उसके सिंह अटकते हैं और वो तो उसी में मर भी जाते, लंबे स्तन मोटा उदर इस तरह के अंग हो वह उपघात नाम कर्म है। देखो आपने शायद सुना होगा, ये तो डॉक्टर बैठी है, जब जन्म होता है बालक का तो उसी की कॉर्ड उसके गले के ऊपर लपेटती है और वो खींची जाती है और वहीं पर मर जाता है ड्यूरिंग बर्थ, जब डिलीवरी हो रही है तो ये कॉर्ड होती है ना अम्बिलिकल कॉर्ड नाक, वो उसके गले के ऊपर ऐसी लपेटी जाती है और वो तो बाहर बच्चा आता है और वो तो खींची चली जाती है और वहीं पर उसका डेथ हो जाता है, तो ऐसे ऐसे भी होता है। जिसके उदय से औरों का घात करे यानी ऐसे कुछ अवयव होते कि अन्य के घात में निमित्त हो, ऐसे कौन कौन से बातें हैं, तीक्ष्ण सींग नख सांप आदि की दाढ़ इत्यादि अवयव हो वह परघात नाम कर्म है। जैसे दांत भी है, वे बाघ है सिंह उसके दांत कहेंगे, नाखून है बड़े बड़े नाखून उसके भी होते हैं प्राणियों के नाखून, उनके वो पकड़ते हैं या मारते हैं दूसरों को, ये परघात नाम कर्म से होते हैं। अब आतप की बात है, जिसके उदय से आताप रूप शरीर उत्पन्न हो वह आतप नाम कर्म है। इसका उदय सूर्य बिंब में उपजे हुए बादर पृथ्वीकायिक जीवों के ही पाया का ही लगा है ना, यानी अन्यत्र किसी पृथ्वीकायिकों में ये नहीं है। सूर्य बिंब में उपजे हुए बादर पर्याप्त पृथ्वीकायिकों के ही पाया जाता है। तो खाली एक ही सूर्य है ना कि जिसमें ये इतना पाया जाएगी, कितने सूर्य? हाँ, दो। हाँ, 32 कहाँ पर? बहुत सारे हो गए, हर द्वीप के अपने अपने, हर समुद्र के अपने अपने समुद्र, ये सूर्यों की चंद्रों की संख्या अलग अलग होगी, बहुत सारे हो गए। हाँ, क्वांटिटी उनकी द्वीप समुद्र तो असंख्यात है, वो भी असंख्यात हो जाएगी, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। दो है। इसका उदय विदेह क्षेत्र में कुछ अलग सूर्य नहीं है, पूरे मेरु की प्रदक्षिणा करने वाला एक ही। हाँ, वो बढ़ते चले जाते हैं और उसका प्रोपोर्शन केवल डबल डबल नहीं है, ज्यादा है। खाली एक नहीं, अभी लास्ट, अभी ढाई द्वीप के बाहर, ढाई द्वीप में तो मूविंग है और उसके बाहर जो अपने अपने जगह में स्थिर है, जहाँ उजाला वहाँ कायम उजाला, जहाँ अंधेरा वहाँ कायम अंधेरा। अब उसका जो एक एक लाख वजन पर जो एक एक वलय कहेंगे हम, मान लेते बाहर अभी पुष्करार्ध है, उसके आगे क्या जो द्वीप है, समुद्र है, द्वीप है, समुद्र है, उसमें कितने 16 लाख है, 32 लाख है, 64 लाख है, जो उसकी जो विर्थ होगी, तो उसके हर लाख वजन का जो वलय है, वो हर वलय पर चार चार सूर्य चंद्र, चंद्र की ये होती है, उसमें जितने चंद्र है उतने ही सूर्य होते हैं, चंद्र की फैमिली। एक चंद्र के साथ एक सूर्य होता है, इतने तारे होते हैं, इतने नक्षत्र होते हैं, वो सब एक चंद्र की फैमिली परिवार के हैं, केला उनकी संख्या बाकी बढ़ती चली जाती है। अब उसका सारा गणित है, वो कैसे कैलकुलेट करना, वो सारा है आपने सुना होगा, वो भूगोल के शिविर में लिया था पूरा। तो यार वहाँ वहाँ हाँ वहाँ वहाँ जैनियों को रहना नहीं, जब वहाँ का सूर्योदय सूर्यास्त जो होगा वैसे चलेगा। हाँ, दिन बड़ा है तो वो लेट हो जाएगा सूर्यास्त उसका, बिल्कुल सूर्य सूर्योदय सूर्यास्त के टाइम के उसके पहले अंतर्मुर्ख निपटना चाहिए। और वैसे भी हमने देखा है शिकागो में ही जाते हैं ना हम, तो वहाँ तो 3 बजे विंटर में तो 3 बजे अंधेरा हो जाता है,
दोपहर का,
तो दोपहर एक ही बार खा लेते हैं, एक बार वो 2-2.5 बजे जो कुछ खा लेते हैं बस, फिर दूसरे भी नहीं खाएंगे और बिल्कुल पानी भी नहीं पीएंगे। ऐसे वहाँ है लोग और कर रहे हैं, एक दो नहीं बहुत सारे।
नहीं नहीं, बात ऐसी होती है कि हम घड़ी देख के त्योहार नहीं करते,
घड़ी देख कर नहीं ना टाइम।
देखो इतना बात ध्यान रखना, सूर्य डूबने का जो अपने पास लिखा हुआ टाइम होगा उसके पहले अस्त काल, डूबना यानी सूर्यास्त, उसके पहले कम से कम अंतर मुहूर्त यानी 48 मिनट, ये यानी 45 दिनों ना, उसके पूर्व अपना भोजन होना चाहिए।
नहीं वहाँ 7 बजे रखो, 9 बजे अगर अस्त होता है तो। वो सूर्य से अस्त का टाइम ले लेना, लोकल टाइम, ऐसा भी है ना, अभी हिंदुस्तान का टाइम अलग है और लोकल टाइम अलग है। जैसे अपने यहाँ भी 6 बजे तक समझो हो, अभी कलकत्ता साइड चले जाओ तो 4:30 बजे अंधेरा हो जाता है, वहाँ का टाइम लेना।
और यहाँ से अमेरिका जाते जाते 4-6 घंटे होते तो सूरज दिखता ही दिखता है, दिखता ही दिखता है।
और कभी कभी ऐसा होता है रात ही रात रहते, वो बीच में खाने का प्रसंग है,
आने के टाइम में वो तकलीफ होती है।
वही वही ऐसा ही होता है।
चलो चलो, अभी सूरज चंद्र के पीछे मतलब
यहाँ तो सूर्य बिंब में उपजे हुए बादर पृथ्वी का एक जो जीव है उनके इसका उदय पाया जाता है, आतप नाम कर्म का, जिसके उदय से उद्योत रूप शरीर उत्पन्न, उद्योत यानी चमकीला, वह उद्योत नाम कर्म है, परंतु उसमें वो उष्णता नहीं है। इसका उदय चंद्रमा के बिंब जुगनु आदि के है, जुगनु समझते हैं ना, आगिया क्या कहते हैं, आगिया मराठी में काजवा कहते हैं,
जुगनु
जुगनु, यानी उसका जो उद्योत नाम कर्म का तो संगी पंचेंद्रिय एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक के तीरियन चौंके उद्योत नाम कर्म का उदय हो सकता है, यानी पंचेंद्रिय ये तीरियंशों में पाया जाता है, मनुष्यों के नहीं, देवों के भी नहीं और ना ही नारकियों के होता है। आपने शायद देखे होंगे ऐसे चमकीले मछली भी दिखती है, बिल्कुल रात के अंधेरे में चले जाओ पानी में तो ऐसे चमकती है, फॉस्फोरस होता है उसके अंदर,
काटे भी जोरदार रहती है।
अपने स्वामी जी के लेक्चर में सुना ये स्मशान का फॉस्फोरस देते हुए चमकता है, हड़का हड़का। पुनश्च विहाय विहाय गति की बात चल रही है, विहाय अर्थात आकाश, उसमें गमन करने को कारण वह विहाय गति नाम कर्म है। इसका अर्थ आकाश में उड़ने वाला ऐसा नहीं है, आकाश है नहीं, वो चल रहा है, वह मनोज्ञ अमनोज्ञ रूप, मनोज्ञ ने मन को अच्छा लगे सुहावना जिसको मनोहर, अमनोज्ञ रूप प्रशस्त अप्रशस्त के भेद से दो प्रकार का है, यानी प्रशस्त विहायोगति और अप्रशस्त विहायोगति, ये दो प्रकार के विहायोगति है और वो भी त्रसों में पाया जाएगा, एक इंद्रियों के ये इसका उदय नहीं होता विहायोगति का, जिसके उदय से द्विंद्रियादिकों में जन्म होता है वह त्रस नाम कर्म है। त्रस किसको कहेंगे, पंचेंद्रिय को कहाँ छोड़ा, संगी को असंगी, संगी को कहाँ छोड़े, अरिहंत भगवान को किस में रखना है, त्रस है कि नहीं, वो उस जीव को ही त्रस जीव कहेंगे क्योंकि उनके त्रस नाम कर्म का उदय, उस जीव को त्रस जीव कहेंगे। यहाँ देखो कि जिसके उदय से द्विंद्रियादिक, द्विंद्रियादि में द्विंद्रिय तीन्द्रिय चतुरिंद्रिय पंचेंद्रिय संगी असंगी दोनों ले लें, उनमें जन्म होता है वह त्रस नाम कर्म है। हम क्या कहते हैं, जो हिले डुले चले वो त्रस, ऐसा उसका है ही नहीं है, चाल जिसको कहेंगे क्या विहाय गति त्रसों को होगी, द्विंद्रियादि जो चलते हैं ना स्वयं गमन कर सकते हैं उसको यहाँ उसकी चाल कैसी है, उसको यहाँ विहाय गति समझ,
ऐसा नहीं समझ। हाथी की चाल कैसे होती है, उस स्त्री जो चलती है उसको भी गजगामी नहीं बताते, यानी उसकी चाल कोई अलग होती है, जो अरबी घोड़ा होता है उसकी चाल अलग होती है, और जो डक क्या बोलते हैं बदक वो कैसे चलता है, हालिक की चाल अलग अलग, डैट इज विहाय योग्यते, वो किसी को प्रशस्त होगी किसी को अप्रशस्त होगी।
इसको अंग्रेजी में गेट कहते, गेट डॉक्टर को मालूम है पेशेंट चल के आता है तो वो कैसे चलता है, तो हमारा आधा डायग्नोसिस तक चलता है, हाँ उसकी चाल के ऊपर से हम डिसीज तक पहुंच सकते हैं। देखो त्रस नाम कर्म, जिसके उदय से जो औरों को रोके तथा स्वयं दूसरों द्वारा रोका जाए ऐसा शरीर निपजता है वो बादल नाम कर्म। क्या कहते हैं, बादल नाम कर्म के उदय से ऐसा शरीर मिलता है कि वो औरों को रोकता है और स्वयं दूसरे द्वारा रोका जाता है, इसको कहेंगे बादर नाम कर्म के उदय से ऐसे शरीर की प्राप्ति होती है। जैसे सूक्ष्म और बादर कैसे समझना है? तो आप काश में से थ्रू एंड थ्रू जा सकोगे, दूसरा कोई जा सकता है? सूक्ष्म जा यानी प्रकाश, अभी पुद्गल पुद्गल की बात है तो लाइट कैन पास थ्रू ग्लास। वैसे ही यहाँ ऐसा शरीर उपजता है बादल नाम कर्म के उदय से, ऐसा शरीर प्राप्त होता है कि वो दूसरे के द्वारा रोका जाता है और उसका शरीर दूसरों को रोकता है। इसको प्रतिघात कहते, प्रतिघात से युक्त है, जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो। ये पहले में पहले त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक ये चारों एक साथ लिए है, उसके अगेंस्ट जो है स्थावर वगैरह उसकी बात में करेंगे। अभी पर्याप्त जीव किसको कहना है या पर्याप्त नाम कर्म किसको कहना है? तो जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो वो पर्याप्त नाम कर्म है। माधवी आहार आदि पर्याप्ति कौन कौन सी है? पर्याप्ति कहना गया आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, कहने दो। हाँ कुछ रह गया। हाँ कौन कहना चाहता है? नितिन भाई आपको मालूम है? नहीं मालूम, कोई बात नहीं, आप कहना। हाँ आहार पर अभी सुनना आप दोनों ही। हाँ आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, हाँ श्वासोश्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति, मन पर। बहुत अच्छा, संगी पंचेंद्रियों की ये पर्याप्ति होती है। कब होती मालूम है? पर्याप्ति का अर्थ होता है शक्ति की पूर्णता। जब अन्य भव से मरकर अन्य भव में चला जाता है तो शुरू में ये शक्तियाँ डेवलप हो जाती है जीव में। उसके कारण क्या होता है? आहार पर्याप्ति के कारण वो जो परमाणु ग्रहण करता है उसको खल रूप रस रूप यानी सॉलिड लिक्विड बनाता है। शरीर पर्याप्ति में जो सॉलिड में से सॉलिड ऑर्गन, लिक्विड में से लिक्विड ऑर्गन्स बनते हैं। इंद्रिय पर्याप्ति में जो द्रवेंद्रियों की रचना तो शरीर पर्याप्ति में होती है और वहाँ से जो उपयोग रूप काम चलता है, जैसे यहाँ के यहाँ से तो गुवर्ण का ही ग्रहण होगा, जो कर्णेंद्रिय बने हुए हैं आवाज़ यानी सुनने का ही कार्य होगा। ऐसे अपने अपने कार्य की शक्ति वहाँ उत्पन्न होती है, उसको इंद्रिय पर्याप्ति कहते हैं। श्वासोश्वास पर्याप्ति, पर्याप्ति नहीं शक्ति, तो ये शक्ति उत्पन्न होती क्या? श्वासोश्वास करने यानी श्वासोच्छ्वास यानी वो जो टिश्यू लेवल पर भी जो ऑक्सीजन इंटेक आउटपुट जो कुछ होता है वो सब श्वासोच्छ्वास में लेगा। उसके बाद भाषा पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति यानी भाषा वर्गणा को शब्द रूप परिणाम आने की जीव में योग्यता उत्पन्न हो। ये सारे तो विभाव रूप शक्तियाँ, ऐसे वो कुछ ज्ञान की शक्ति है वो ऐसी शक्ति नहीं है। मन पर्याप्ति में द्रव्य मन के द्वारा जानने का जो कार्य करने की योग्यता उत्पन्न होती है उसको मन पर्याप्ति। अंतर्मूर्त में पूरी होती है, इसका जो कार्य है वो थ्रू आउट लाइफ चलता है, यानी शरीर के परमाणु को लेना, उसको शरीर रूप परिणाम आना, ये सारे जो छह पर्याप्ति का जो कार्य है वो तो पूरे आयु तक चलेगा। इसलिए यहाँ कहते हैं जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो वो पर्याप्त नाम कर्म, यानी पर्याप्त नाम कर्म वाले जीव को पर्याप्त जीव कहते हैं। उसकी पर्याप्ति तो नियम से पूर्ण होती ही होती है। अपर्याप्त नाम कर्म के उदय से उस जीव को लब्धि अपर्याप्त कहते हैं और एक भी पर्याप्ति पूर्ण नहीं होते, भले छह शुरू तो हो गई, एक भी पूर्णता को नहीं पहुँचती और वो मर जाता है इतनी जल्दी उसका मरण, उसको लब्धि अपर्याप्त कहेंगे। बहुत छोटा, अभी उसको हम सेकंड में नहीं गिनेंगे, यथा योग्य अंतर्मूर्त, क्योंकि एक एक पर्याप्ति को भी अंतर्मूर्त लगता है और एक के बाद एक एक पूर्णता को प्राप्त होती है। स्टार्ट सब एक साथ होते हैं, जैसे हम वो देखते हैं ना रनिंग शुरू करते तो एक साथ सब रनिंग शुरू करते, फिर भी यहाँ पूर्णता एक एक की एक एक के बाद होती है, अंतर्मूर्त अंतर्मूर्त के बाद। ये अपना तो जीव कांड में विषय चला था, फिर भी अभी कोई नए लोग है इसलिए इसको ले लिया। जिसके उदय से आहार आदि पर्याप्ति पूर्ण हो वह पर्याप्त नाम कर्म है। पर्याप्ति छह प्रकार की लिखा है आगे। हाँ आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति, इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मन पर्याप्ति। त्रस बादर पर्याप्त और प्रत्येक चरित्र, चार बातें हमने देखी। अब उसकी बात यहाँ करेंगे। प्रत्येक शरीर नाम कर्म, प्रत्येक शरीर का अर्थ क्या है यहाँ पर? प्रत्येक शरीर नाम कर्म, उसके उदय में क्या कार्य होता है? देखो, शरीर नाम कर्म के उदय से उत्पन्न शरीर, वह जिसके उदय से एक शरीर एक आत्मा के उपभोग का कारण हो। क्या कहते हैं? एक शरीर में एक आत्मा रहता है, रहता है ना, उसका उपभोग, वो उस जीव का कहलाता है शरीर। आप कहेंगे इस शरीर में, एक शरीर में बहुत सारे वर्म्स भी है, बैक्टीरिया भी है, वायरस भी है, उसकी बात नहीं है, वो उसके आधार से रह रहे हैं, उसकी बात नहीं, ये एक मनुष्य शरीर कहलाए। तो इसका उपभोग आत्मा के उपभोग का कारण है, वो उस जीव का कहलाएगा। एक शरीर में एक ही आत्मा हो, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म। ऐसे ये प्रत्येक शरीर नाम कर्म वाले कोई जीव आपको मालूम है? मिली भाई, आप सीखो ना कर्म कांडी थी आपको, प्रत्येक शरीर ही कोई जीव, उनके नाम बताना है। ब्लैंक हो गए, कौन बताना? प्रत्येक शरीर वाले कौन कौन से जीव आपको मालूम है? हाँ, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, हाँ, एक इंद्रिय में, एक इंद्रिय में क्या है? हाँ, वनस्पति का है, क्या है? हाँ हाँ, अभी आए लाइन पर। हाँ,
आपने नाम पूछे थे,
हमने लाइन नाम पूछे हैं, आपको नाम बताओ ना।
मिली भाई,
हाँ,
एक अरविंद भाई, एक मैं,
यही
प्रत्येक से
तो बताने थे ना। अच्छा, एक इंद्रिय में नाम लेकर बताओ, एक इंद्रिय में नाम लेकर बताओ, प्रत्येक शरीर वाले कौन कौन है? बादल क्यों, सूक्ष्म क्यों नहीं? हाँ हाँ, बस बोलो ना उसको,
पहले ट्यूब नहीं।
देखो, ऐसा कहना, जैसे हम निगोद की जब बात की थी तो निगोद कहाँ नहीं रहते उसकी बात की थी, तो पृथ्वी के आधार से नहीं रहते, अग्नि के आधार से नहीं रहते, ऐसी ऐसी बातें थी, है ना? और जिसके आधार से रहते उसको प्रतिष्ठित कहा था, उसकी बात यहाँ नहीं हो रही। प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित, वो प्रत्येक है कि नहीं, इतनी बात करनी है। भले प्रतिष्ठित हो नहीं हो उसकी बात नहीं, वो प्रत्येक है कि नहीं है। तो प्रत्येक शरीर वाले कौन कौन से है, हम एक इंद्रिय से शुरू करते हैं। वनस्पति कायिक में भी प्रत्येक टाइप की भी वैरायटी है और साधारण की भी वैरायटी, यानी प्रत्येक वनस्पति कहेंगे। प्रत्येक और साधारण, ये दो भेद मात्र वनस्पति में है, अन्य सभी प्रत्येक। एक शॉर्ट में कहना है तो, अब उसका नाम लेके बताना है तो, पृथ्वी कायिक है, अग्नि कायिक है, वायु कायिक है, जल कायिक है, प्रत्येक वनस्पति कायिक है, और बाकी सभी इंद्रिय से पंचेंद्रिय। अब उसमें किसके आधार से निगोद रहते हैं, उस प्रत्येक को प्रतिष्ठित कहते हैं, वो तो बात अलग है, वो यहाँ का विषय नहीं है। उसमें फिर कहेंगे देव और नारकियों के शरीरों के आधार से निगोद नहीं रहते, अन्य त्रसों के आधार से निगोद रहते हैं, परंतु उसकी चर्चा यहाँ नहीं हो रही। यहाँ तो वो प्रत्येक है कि नहीं, इतनी बात कर रही। तो यहाँ देखो, सारे प्रत्येक जीव है, प्रत्येक शरीरी जीव कहो, प्रत्येक जीव कहो। तो एक शरीर में एक ही आत्मा हो, वह प्रत्येक शरीर नाम कर्म है। ये सारे जोड़ी जोड़ी में से एक एक दे ले रहे, उसके अपोजिट बाद में बताएंगे सारे। अब वो स्थिर अस्थिर वगैरह जो है ना, उसमें से एक एक ले रहे, स्थिर शुभ शुभ इनको ले रहे, जिसके उदय से रसादिक धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर स्थिर रहे, वह स्थिर नाम कर्म है, कहा ही है। अभी क्या कहा है उसको पढ़कर फिर वो रसादिक, रसादिक धातु का अर्थ समझते हैं? रस यानी वो लिम्फ यानी लिक्विड जो है, रुधिर यानी खून, फिर उसमें मांस यानी स्नायु है, हड्डी है, चर्म है, ये सारे क्या है? धातु। और उपधातु यानी उसके और जो कुछ मेन है उसको धातु कहेंगे, और उसके जो कुछ ऑर्डिनरी है सब ऑर्डिनरी उसको हम उपधातु कहेंगे।
ये सप्त धातु से सहित और रहित ऐसी जो बात आती है ना, वो इन धातुओं का नाम है।
तो कहते रसादिक धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर स्थिर रहे, वह स्थिर नाम कर्म है, कहा ही है यानी वो एक, ये जो स्कंद बना है रस रूप, वो एक एक जो है वो आगे आगे वाले में परिणमित हो रहा है, यानी उसका अन्य रूप से बन जाता है। हम ये पढ़ेंगे श्लोक तो और ख्याल में आएगा। देखो रसाद रक्तम ततो मासम मासात मेद प्रवर्तते मेद तो ततो मज्जम मज्जा शुक्रम ततः प्रजा वातपित्तम तथा श्लेष्मा स्नायुश्च चर्म च जठराग्निरिति प्राज्ञैः प्रोक्ता सप्तोपधातवः। ये ऊपर धातु और नीचे उसके उपधातु बताएं, उसका अर्थ देखेंगे क्योंकि अभी संस्कृत पढ़ा है ना। यहाँ कुछ लिखा नहीं उसके बारे में। रस से लोही यानी खून रक्त होता है, लोही यानी खून ब्लड, यानी रस यानी वो लिक्विड फॉर्म लिम्फ जिसको कहेंगे। तो कुछ दिन के बाद, कुछ काल के बाद उसका रस रक्त रूप परिणमन हो जाता है। रक्त से मांस होता है, मांस से मेद होता है, मेद से हड्डी होती है, हड्डी से मज्जा होती है। ये मांस समझते हैं ना, स्नायु, और मेद यानी जो चर्बी वो हड्डी, हड्डी से मज्जा, मज्जा यानी अभी नर्व, नर्व मज्जा रज्जू कहते हैं ना, नर्व। मज्जा से शुक्र होता है, शुक्र से प्रसूति रूप प्रजा की उत्पत्ति होती है। ये सात धातु इस क्रम से परिणमित होते हैं, वो एक है वो दूसरे रूप परिणमित होता चला जाता है। ये सात धातु 30 दिन में होते हैं, तो एक धातु 4 दिन और 2 दिन के 7वें भाग में होता है ऐसा जानना। पुनश्च वात पित्त श्लेष्म सिरा स्नायु चर्म उदराग्नि, ये 7 उपधातु है। हमने वात पित्त श्लेष्म तो सुन रखे है ना, सिरा स्नायु चर्म उदराग्नि, ये मांस में इसको नहीं लिया था, यहाँ स्नायु अलग लिया। श्लेष्म है ना, उसको कफ कहते आयुर्वेद में, कहते ना वात प्रकृति के, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति है, ये तीन। इनका शरीर में जहाँ स्थान है वहीं स्थिर रहे, वे स्थिर प्रकृति के उदय से रहते। और उसका स्थान बदलना या तो जो रस रूप है वो लोही रूप हो जाना, वो कहेंगे वो तो अस्थिर की बात करें, अपने रूप से रहना वो स्थिर नाम का। पुनश्च जिसके उदय से मस्तकादि शरीर के अवयव मनोज्ञ रमणीय प्रशस्त हो, वह शुभ नाम कर्म है। जिसके उदय से अन्य जीव आपसे प्रीति करे, वह शुभ नाम कर्म है। देखो शरीर के अवयव अच्छे प्रोपोर्शनेट या सुंदर दिखना अलग बात है, और लोगों को उनके प्रति आकर्षण होना या वो लोग उसे प्रीति करना अलग बात है। कभी कभी ऐसे एक एक आप अवयव देखे तो ऐसी नहीं, मगर कोई बच्चा ऐसा मोहक दिखता है ना, लोग उसके प्यार कर दे बहुत, सबका फेवरेट हो जाता है वो, शुभ नाम करना। जिसके उदय से मनोज्ञ ने सुहावना स्वर शब्द निजे, वह सुस्वर नाम कर्म है। लता मंगेशकर, जिसके उदय से प्रभा यानी कांति युक्त शरीर निपजे, वह आदेय नाम कर्म है। जिसके उदय से अपना पुण्य रूप पवित्र गुण जगत में प्रकट हो, यश हो, वह यशस कीर्ति नाम कर्म है। यानी दुनिया जाने कांति यानी जिसको हम देखते हैं ना, कोई काला भी है मगर तेजस्वी है, तेजपुंज दिखता है, तो क्या उसके आदेय नाम कर्म। जिसके उदय से यथा योग्य निष्पत्ति होती है, वह निर्माण नाम कर्म है। जो अवयव बनते हैं यथा योग्य यानी उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, उसका प्रमाण और उसका स्थान। जैसे मछली की आंखें कहाँ पाई जाती है, और फ्रॉग देखा है क्या कहते हैं उसको,
ढेड़को,
मेंढक,
ढेड़को,
ढेड़को, मेंढक, उसकी कैसी होती है, ऐसी ऊपर होती है, प्रोट्रूडिंग होती है। तो हर एक की अपनी अपनी उस जिस पर्याय में है वहाँ के जो उसके अवयव है वो उस यानी उस विशिष्ट स्थान में होते हैं और विशिष्ट नंबर में होते हैं। उसको क्या कहेंगे, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। यहाँ लिखा है कि नहीं आगे देखेंगे, हाँ आगे देखेंगे। वह दो प्रकार का है, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। वहाँ जाति नाम कर्म के उदय की सापेक्षता के साथ, यानी उस जाति नाम कर्म का उदय है, जैसे एक इंद्रिय हो, द्विंद्रिय हो, तीन इंद्रिय, तो द्विंद्रियों में जो जो अवयव होते हैं वो वहाँ उत्पन्न हो गए। अभी दो इंद्रियाँ उत्पन्न होगी और उसकी भी अपनी अपनी निश्चित जगह होगी, वहाँ पर उत्पन्न होगी। तो जाति नाम कर्म के उदय की सापेक्षता के साथ नेत्रादिक जिस स्थान में होना चाहिए उसी स्थान पर निपटा दे। नेत्रादिक में सब ले लेना, सभी अवयव ले लेना, नाक है, कान है, आँखें जो है, कुछ है, हाथ है, पैर है, जो कुछ अवयव होते हैं वो सब आदि में ले लेना। वह स्थान निर्माण है तथा नेत्रादिक का जितना प्रमाण होना चाहिए उतने ही निप जावे वह प्रमाण निर्माण है। जब ये एनाटॉमी के लैब में जाके देखो, वहाँ कोई ऐसे रखे होते हैं कि तो वो तो ऐसे एबनॉर्मल बालक जन्म थे, किसी को तीसरा आँख है यहाँ, किसी के और क्या क्या होते हैं, उंगलियाँ भी एक सौ हो जाती हैं, कभी किसी का हाथ, ये सारी उंगलियाँ वगैरह इधर से शोल्डर से ही निकलती हैं, बीच वाले हाथ ही नहीं होते हैं। डिफॉर्मिटीज तो अलग अलग बहुत टाइप की देखी जाती है। तो ये क्या है, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण का जो कुछ हुआ यथा योग्य उदय है। पुनश्च श्रीमद अरहंत तीर्थंकर पद को कारण वह तीर्थंकर नाम कर्म, ये भी नाम कर्म का भेद है, जिसके कारण वो तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांधी है उसका उदय आता है, तो वो तीर्थंकर होता है। समोचरण आदि की रचना होती है धीरे धीरे सीखते, हमने वो सारे बालबोध में ही सीखा है ना, क्या क्या विशेषता होती है, तो कौन से गुणस्थान में उदय होता है तीर्थंकर प्रकृति का उदय, कौन से उदय उदय कब होता है, वो तीर्थंकर कब कहलाता है, बहुत अच्छा, तेरे गुणस्थान। थोड़ा विचार करके उत्तर देना, ये करना नहीं हो, सारा कॉमन सेंस है। आपकी भाषा में कॉमन सेंस इज सच अ सेंस इट इज वेरी अनकॉमन। पुनश्च जिसके उदय से एक इंद्रिय में उपजता है वह स्थावर नाम कर्म। हमने कौन कौन सी प्रकृतियां देखी, अभी उसकी जोड़ी वाली अभी यहाँ से शुरू होगी, त्रस से शुरू किए, बोलो मिली भाई, त्रस, त्रस हम कौन से देख के आए, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, आदेय, यशस्वी, हाँ ये हमने देखे, बारह देखे थे, अभी उसके अगेंस्ट निर्माण और तीर्थंकर के लिए कोई प्रतिपक्ष नहीं है, तो ये यहाँ दस हो जाएगी। जिसके उदय से एक इंद्रिय में उपजता है वह स्थावर नाम करना है। जिसके उदय से किसी के द्वारा रोका नहीं जाता तथा जो किसी को रोकता नहीं ऐसा सूक्ष्म शरीर प्राप्त हो वह सूक्ष्म नाम कर्म है। छह पर्याप्ति के अभाव को कारण ऐसा अपर्याप्त नाम कर्म है। छह पर्याप्ति के अभाव ने उसकी एक भी पर्याप्ति पूर्णता को प्राप्त नहीं होती, पर्याप्त होने ने पूर्ण होना, शक्तियाँ शुरू तो हो जाती है परंतु वो बहुत अल्प काल में श्वास के 18वें भाग में मर जाता है। पर्याप्ति नाम पूर्ण होने का है, आगे लिखा है। यह अपर्याप्त नाम कर्म पर्याप्तियों को पूर्ण नहीं होने देता। जहाँ एक शरीर में अनंत आत्मा पाए जाते हैं वह एक शरीर अनंत जीवों के उपभोग का कारण है, उसे क्या कहते हैं, नैन्सी भाई क्या लिखा है, साधारण शरीर, किसको, शरीर एक, जीव अनंत रहते हैं, यानी उनका शरीर कॉमन है, अनंत जीव एक साथ जन्मते हैं, एक साथ वहाँ रहेंगे, एक साथ मरेंगे, उनका श्वासोश्वास सबका एक कहलाएगा, उनका जो शरीर के परमाणु ग्रहण होते हैं, आहार जिसको कहेंगे वो भी एक होगा, श्वासोश्वास भी एक होगा सबका। उसके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय पाया जाता है। साधारण शरीर का अर्थ है दूसरे शब्दों में निगोद। तो जीव निगोद में क्यों उत्पन्न होता है, तो उसने ऐसे परिणामवश ये साधारण शरीर नाम कर्म बांधा है, तो वहाँ वो जाके उत्पन्न होता है। इसका उदय लिखा गया निगोद जीवों के ही है, इसलिए निगोदों को साधारण जीव भी कहेंगे या साधारण शरीर वाले जीव भी कहेंगे। पुनश्च धातु और उपधातु अपने अपने स्थान पर स्थिर न रहे, जिसके उदय से चलायमान हो वह अस्थिर नाम कर्म है। जिसके उदय से मस्तक आदि अवयव अमनोज्ञ यानी अप्रशस्त बुरे निपजते हैं वह अशुभ नाम कर्म है। पुनश्च रूपादिक गुण संयुक्त होने पर भी जिसके उदय से अन्य जन अप्रीति करते हैं, प्रीति नहीं करते, वह दुर्भग नाम कर्म। अभी देखा ना हमने, वो तो ऐसे तो उसके फीचर्स तो अच्छे हैं, फिर भी किसी के उसके प्रति प्रीति नहीं होती है, तो क्या कहते हैं, दुर्भग नाम कर्म। जिसके उदय से अमनोज्ञ असुहावना स्वर यानी शब्द निपजता है वह दुस्वर नाम कर्म है। जैसे हम पीरियंसों में देखते हैं कौवे का कैसा और कोयल का कैसा है, कहेंगे दुस्वर सुस्वर का भेद है उसमें। जिसके उदय से, इसका अर्थ क्या है कि केवल इसके रटना नहीं है क्या क्या कार्य, तो ये जो कोई कार्य है वो पुद्गल का है, नाम कर्म का कार्य है। क्योंकि हम आवाज़ अच्छी हो, देखो मैं कितना अच्छा गाती हूँ, मैं कितना अच्छा बोलती हूँ, तो ये नहीं, वो शब्द में उसका अपनापन हो जाता है, कर्तापना की बुद्धि हो जाती है। जब ख्याल में आता है ये सारे नाम कर्म के भेद हैं, तो अपना यश हो जाए तो खुला सम क्या है? और थोड़ा वजन बढ़ गया ऐसा लगता है क्या होता है, तो कहते हैं यश कीर्ति का आगे जाके देखने वाले एक इंद्रिय जीवों के भी होता है यश कीर्ति का होता है। हाँ वनस्पति होती है, अब ये हीरा माने पत्थर क्या है, सारे पत्थर एक इंद्रिय है, तो उनमें भी ये यश कीर्ति का उदय हो सकता है। तो तुम और तुम्हारा जो यश हो रहा है वो तो यश कीर्ति नाम कर्म के उदय से हो रहा है, उसमें कुछ बड़प्पन नहीं अपना से। तो कोई ऐसे ना, तो हनुमान अभी मोक्ष गए और उनके तो पूछ लगा के और बंदर बना के सब जगह ये करे, कौन से नाम कर्म का उदय चल रहा है उनका, यश के अयश क्यों अभी
क्या बोल रहे हैं, अभी पहला सुना उन्होंने क्या कहा। अरे
हम ऐसे प्रश्न आपको पकड़ने के लिए करते हैं,
प्रश्न फिर से पूछो, उसको तो गलती याद नहीं है।
नहीं उन्होंने बराबर सुना, देखो हमने ऐसा पूछा, ये भी बताया था कि हनुमान मोक्ष गए हुए हैं, फिर भी अभी उनको वो बंदर बना के और पूछ लगा के और मुंह ऐसा करके उसको लोग पूछते हैं, तो उनके कौन से कर्म का उदय चल रहा है, तो आपने बताया अयश कीर्ति का, तो ये बात सही है कि नहीं है, कहाँ गए
तो समझते नहीं क्या है। अरे मोक्ष कभी होगा, सारे कर्म नष्ट होंगे तब होगा ना।
अभी मोक्ष गए तो यश कीर्ति का उदय हो रहेगा क्या, एक भी कर्म बाकी नहीं है, क्योंकि संपूर्ण कर्मों का अभाव रूप वो मोक्ष कहला।
वो हम अमेरिका में गए थे तो वहाँ एक जगह हमको पूछा कि आप कहते हिंदुस्तान में कौन सा तीर्थंकर पॉपुलर है, वो ही हम मूर्ति चाहते हैं, तो पारसनाथ है क्या। मैंने कहा भाई हमारे ख्याल से तो जो पारसनाथ है उनसे कोई भी कर्म अभी बाकी नहीं है, उनका यश का पॉपुलरिटी का कोई काम ही नहीं। तो समझ गया
नहीं, ये जो लोग करे ये लोगों की मूर्ता है, ये उनके कोई कर्म का उदय सिदय नहीं है, समझ में आई ना बात। ये नहीं, हमें ये कर्म की भी बात पता नहीं है, इतना तक समझते हैं कि लोग कोई मर गया है हम यहाँ पूजा करेंगे, किसी को दान देंगे, कोई शांति होम करेंगे तो उस जीवों को शांति मिलेगी। अरे वो अपना कर्म लेके गया कि तुम्हारे शांति करने से उसकी शांति होने वाली,
उनके कर्म कम हो जाएंगे,
कर्म को उनके कम हो जाएगी, क्या क्या होगा?
वो तो बता ना फोटो लेके।
अरे हाँ, अभी मैं गांव का नाम नहीं बताऊंगी, वहाँ तो दो महिलाएं आई, उनके माता पिता ऑफ हो गए थे और वहाँ तो अमेरिका में, और वे यहाँ चली गई थी। तो हमें इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, हम क्या करते हैं, वो फोटो रखे उनके तो भगवान के सामने ऐसे फोटो ऐसा लेके ऐसे उसके नमस्कार करा भगवान। अभी यहाँ इतने पढ़े लोग ऐसे ऐसी भी नहीं है कि बिल्कुल हम यहाँ के भी ऐसे कोई नहीं करते हुए दिखाई देते, और ऐसा कहीं ना कहीं कुछ रह जाती है अंदर। और वो पूछते भी है, सरल है वैसे,
प्रामाणिक
कि हम ऐसा करते हैं तो उनको कुछ, यानी अभी उनको कुछ लाभ मिलता होगा कि नहीं मिलता। क्या कहे, एक कर्म के बारे में और ये ऐसी कुछ बातें हैं। हाँ देखो आगे बढ़ेंगे, ऐसे कितने लोगों की कितनी मान्यता, भी कुछ ऐसी याद आती है तो बता देते आपको। ये हमने यश कीर्ति की बात देखी थी, अभी ये अशुद्ध वाली बातें सब देख रहे हैं हम। दुस्वर की बात हमने देखी थी, अब अनादेय की बात पढ़ेंगे। जिसके उदय से प्रभा यानी कांति रहित शरीर निपजता वह अनादेय नाम कर्म। जिसके उदय से पुण्य गुण से उल्टा अपयश जगत में प्रकट हो वह अयश कीर्ति नाम कर्म है। ये जरूरी नहीं कि वो जीव उतना दोषी हो या वो कोई, तो उसके अयश का उदय चल रहा है तो वो चलेगा। जैसे हम देखते प्रथमान युग में कितनी बातें हम पढ़ते, कथाएं सुनते, सीता को वो लोकापवाद हुआ, लोगों की वो तो जो कोई गलती जिसकी हो गई, तो ऐसा भी होता है किसी का ऐश, वो है गुणी परंतु उसका अयश हो जाता है तो अयश कीर्ति का उदय। जिसके उदय से लोक पूजित कुल में जन्म होता है वह उच्च गोत्र है, और जिसके उदय से लोक निंदित कुल में जन्म होता है वह नीच गोत्र है। अभी नारके और तिरियंश होंगे तो नियम रूप से नीच गोत्र ही होता है, मनुष्यों में दोनों ही पाए जाते हैं, उच्च नीच, उच्च गोत्र ये जरूरी नहीं। नारकी संगी पंचम जी है वे नीच गोत्र वाले
नहीं, ऐसा नहीं,
क्योंकि बाकी सारे तिरियंश है ना, एक इंद्रिय से असंगी तक तिरियंश है, उनके तो नीच गोत्र ही होगा, परंतु पांचवे गुणस्थान वाले तिरियंश उनके उच्च गोत्र भी हो जाते हैं ना। हाँ बदल जाता है, खाली उसमें केवल बदलता है। अब उसके डिटेल में नहीं जाएंगे हम, बिल्कुल यहाँ स्थूल रूप से कथन करेंगे। हाँ।
एक प्रश्न है।
हाँ।
आपने पूछा कि संगी पंचेंद्रिय जीव यानी उच्च गोत्र वाला है क्या, ऐसा आपने प्रश्न किया ना।
हाँ, उनमें दोनों ही पाएंगे,
तो मैं बोलता
हूँ उसके नीचे नहीं होता है
गधा जो है, गधा डोंकी, उसका उच्च गोत्र क्यों नहीं मिलेगा? अरे सब लोग बोलते क्या गधा है, इतना नहीं समझता है, उसका उद्धार कर रहे हैं।
वही बताया तिरियंश और नारकियों में तो नीच गोत्र है, और देव मनुष्यों में, देव में तो उच्च गोत्र ही है, मनुष्यों में दोनों ही पाए जाते हैं।
वहाँ एक बहुत अच्छी बात भी है, लोक पूजित कुल में जन्म होना या लोक निंदित कुल में जन्म होना,
हाँ।
वेरी मैटर फिनिश होता है।
जिसके उदय से लोक निंदित कुल में जन्म होता है वह नीच गोत्र है। और यहाँ तो बिल्कुल अभी तो शब्दों की निरुक्ति बता रहे हैं, और यहाँ स्थूल चर्चा। जिसके उदय से देना चाहता है परंतु दे न सके वह दानांतराय है। हम दान देना चाहते हैं और कोई बीच में रुकावट आ जाती है। जिसके उदय से लाभ को चाहने पर भी लाभ नहीं होता वह लाभांतराय है। मैं तो उदाहरण हमेशा देती हूँ, बैंक में हमारा ही पैसा पड़ा है और आज मिलने वाला था तो वो स्ट्राइक हो गया, वहाँ बैंक का हड़ताल हो गया, तो लाभ होने वाला था नहीं हुआ, लाभांतरा है। जिसके उदय से पुष्पादिक भोगना चाहे परंतु भोग न सके वह भोगांतरा है। पुष्पादिक इसलिए कहा कि इंद्रियों के विषय है, वहाँ तो सुगंधी पुष्प को भोगना चाहता है, अभी आप लाडू लड्डू खाना चाहता है, सब में लगा लो भोगांतरा। हाँ डायबिटीज हुआ, डायबिटीज हुआ जिसके उदय से
स्त्री भोगांतरा की एक बात मैं समझाऊंगा उदाहरण के माध्यम से। बहुत साल पहले की बात है, जब मैं जवान था तो हम स्कूटर में आ रहे थे, तो रात के मेरे ख्याल से रात को पिक्चर देख के आते 12 साढ़े 12, तो ये टाइम हॉस्पिटल के उधर फूल वाला ऐसे फूल फूल गजरा। मैंने बोला यार अभी कितना है, बोले इतने इतने का, कब का बोल, तो उसने कुछ 15 रुपये बोला, तो मैंने 2 रुपये में पूरा जो कुछ 10-15 जो कुछ थे वो ले लिया। उसको भी दुकान बंद करके घर से जाना था ना, मतलब रास्ते में, तो अभी रात को 12 बजे कौन पहनेगा, तो बोले उसको पूरी बांध के फ्रिज में रखा और दूसरे दिन निकाला तो उसके अंदर ऐसी ईड़ 2-3। उस दिन से फूल आज तक खरीदा नहीं। ये कैसा है, भोगांतर है, इन्हें हम भोगना चाहते हैं लेकिन नहीं होता है।
देखो दो शब्द रहते हैं, भोग और उपभोग। एक बार जैसे फूल सूंघा तो उसका भोग हो गया, और जो वस्तु एक थाली में हम रोज खाते हैं तो थाली का तो उपभोग होता है, परंतु जो एक रोटी खाई है उसका क्या किया, लड्डू खाया, उसका तो भोग हुआ। पर एक ही चीज को बारम्बार उसको भोग करना, उसको कहेंगे उपभोग। जैसे कपड़े हैं, गहने हैं, ये सारे ये उपभोक्ता वाली बातों की। जिसके उदय से स्त्री आदि को बारंबार भोगना चाहता है परंतु उपभोग नहीं होता, वह उपभोगांतराय है। जिसके उदय से अपनी शक्ति प्रकट करना चाहता है परंतु शक्ति प्रकट नहीं होती, वह वीर्यांतराय है। ये तो बाह्य की अपेक्षा बताया है, परंतु यह दान लाभ भोग उपभोग भी आत्मा के गुण हैं, और उसमें भी वो अंतराय लगा सकते हैं और बाह्य की अपेक्षा भी बता सकते हैं। यहाँ दानस्य अंतराय इत्यादि में षष्ठी तत्पुरुष समास जानना, क्योंकि दानादि परिणमन के विघ्न का कारण अंतराय कर्म है। इस तरह
यहाँ हमें षष्ठी तत्पुरुष परसों आई थी ना बात, तो दान का अंतराय, एक्चुअली शब्द कैसा है, दानांतराय, तो कैसा बना, दानस्य यानी से यानी दान का अंतराय, तो इसको षष्ठी तत्पुरुष कहेंगे। यानी ये नितिन भाई का शर्ट ऐसा हम लगाते ना का, वैसा यहाँ दान का अंतराय, एक्चुअली हम बोलते दानांतराय भोगांतराय वगैरह, ये षष्ठी तत्पुरुष इसको ऐसा कहते, ये समास है, उसका नाम है।
यानी का प्रत्यय निकाल कर दो शब्द जोड़ दिए, उसको कहेंगे उसका समास हुआ।
आपने बताया नो नू नी गुजराती में,
पर हम नितिन शर्ट नहीं कहते परंतु कॉटन शर्ट कहते हैं, तो कॉटन ना शर्ट तो कॉटन शर्ट।
चलो
इस तरह उत्तर प्रकृतियों की निरुक्ति कही है। अभी ये विषय तो कल ही लेना पड़ेगा,
इतना पड़ेगा ना, तो कल
आगे नाम कर्म की उत्तर प्रकृतियों में अभेद विवक्षा से जो प्रकृतियां गर्भित है उन्हें दिखाते हैं। यानी 93 के बदले अभेद बताकर उसके उसका हिसाब बताएंगे, वो बात हम कल देखेंगे। जावानी के ज्ञान से तुझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हो गुरु। नितिन भाई